अध्याय दूसरा। गोवा में से मैं नौका लेकर वापस बंबई आ गया और हिमालय की ओर अपनी यात्रा पुनः प्रारंभ की। मैं ट्रेन से दिल्ली गया और वहां से उत्तर पश्चिम दिशा में पठानकोट शहर पहुंचा, जो जम्मू कश्मीर की सीमा के निकट है। फिर एक ट्रक के पीछे बैठकर मैं हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नगर पहुंचा। गर्मियां पास आ रही थी और पीले, नारंगी, जामुनी और सफ़ेद पुष्पों से वन खिल उठा था। विशाल वृक्ष उज्ज्वल हरे पत्तों के वस्त्रों से ढके हुए थे और वन्य प्राणियों का सतत गुंजन वातावरण को प्रफुल्लित कर रहा था। धर्मशाला से ऊपर पहाड़ की चोटी पर स्थित था मैक्लोडगंज, जो तिब्बतियों का शरणार्थी शिविर और दलाई लामा का घर है। पर्वत पर बने दलाई लामा के मठ पर जाने की तैयारी करते हुए मैंने पहले उनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक माई लैंड एंड माई पीपुल पढ़ ली। मैंने जाना कि लम्हा द्रोन्दुप का जन्म 1935 में पत्थरों और मिट्टी से बने सादे घर में एक निर्धन कृषक परिवार में हुआ। तिब्बत के स्थानापन्न शासक ने वरिष्ठ साधुओं के एक खोजी दल को उस घर में भेजा, क्योंकि उसे एक दिव्य दर्शन में ये उजागर हुआ था कि अगले दलाई लामा का जन्म उसी घर में हुआ है। जब वो बालक केवल 2 वर्ष का था तो वे साधु उस घर में यात्रियों का वेश बनाकर आश्रय मांगने आए। एक साधु के गले में पिछले दलाई लामा की माला थी, जिसे इस बालक ने पकड़ लिया और उसे अपनी कहने लगा। अनेक भेंटों और परीक्षाओं के पश्चात समिति ने ये निष्कर्ष निकाला कि छेरिंग के 14वें अवतार को ढूंढ लिया गया है। माना जाता है कि छेरिंग करुणा के बोधिसत्व हैं, जो तिब्बत के लोगों का आध्यात्मिक और सामाजिक मार्गदर्शन करने के लिए प्रत्येक पीढ़ी में दलाई लामा बनकर जन्म लेते हैं। बालक को ल्हासा के मठ में ले जाया गया, जहां उसे भविष्य में राष्ट्र का अध्यक्ष और आध्यात्मिक मार्गदर्शक बनने के लिए तैयार किया गया। उनके बचपन के शासन के दौरान तिब्बत फलने फूलने लगा, किंतु 1950 में चीनी सेना ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया और 1956 तक देश विद्रोही आंदोलन और हिंसा की आग से तहस नहस हो गया। दलाई लामा के हितैषियों को उनकी जान पर खतरा दिखाई दिया और उनके जोर देने पर वे अपनी प्रिय मातृभूमि से पलायन करने के लिए विवश हो गए। जाने से पहले उन्होंने भगवान बुद्ध के मंदिर में प्रार्थना की और वेदी पर रेशम की एक श्वेत चादर चढ़ाई, जिसका अभिप्राय था कि वे विदाई तो ले रहे थे किंतु वापस लौट कर आएंगे। भारी हृदय के साथ उन्होंने साधु के वस्त्र उतारे और एक सिपाही का वेश बदलकर रात के अंधेरे में महल से निकल पड़े। भारी हिमपात, मूसलाधार वर्षा और ठिठुराती शीत के बीच उनके दल ने भगौड़ों की भांति तिब्बत के पथरीले पहाड़ों को पार किया। उनका हृदय अपने लोगों की दुर्दशा को देखकर विदीर्ण हो रहा था। रोग, थकान और, जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा, एक ऐसी गहरी वेदना जिसे मैं व्यक्त नहीं कर सकता, इससे पीड़ित वे सीमा पार कर भारत भूमि आए। पलायन, नियति और बाधाओं को पार करने की इस अद्भुत कथा से मैं रोमांचित हो उठा। मैं उस स्थान को देखने के लिए उत्कंठित था जहां तिब्बती बौद्ध धर्म के मुख्याध्यक्ष ने अपना नया निवास बनाया था। 1971 में जब मैं वहां पहुंचा तो हिमालय के ऊंचे पहाड़ों, वनों और गहरी घाटियों से घिरा मैक्लोडगंज के एक छोटा तिब्बत लग रहा था। शरणार्थी अपने पारंपरिक परिधान पहनते और तिब्बती शैली में बने ईंटों या लकड़ी के मकानों में रहते, जिनके खंभों और मेहराबों पर ड्रैगन एवं अन्य काल्पनिक जीवों की नक्काशी थी अथवा चटक रंगों में चित्र बने थे। पर्वतों पर याक चर रहे थे और कुछ पश्चिमी लोग इधर उधर एकांत स्थान ढूंढकर ध्यान कर रहे थे। तिब्बत के समान ही यहाँ भी अधिकांश पुरुष बौद्ध साधु थे। गांव के केंद्र में श्रद्धालु, भक्त प्रार्थना चक्रों से घिरे एक विशाल आयतकार क्षेत्र की परिक्रमा करते थे और उन चक्रों को घुमाते हुए ओम मणि पद्मे हूं मंत्र का उच्चारण करते थे। मैंने पढ़ा था कि तिब्बती बौद्ध लोगों की मान्यता है कि ये मंत्र करुणा के मूर्तिमान स्वरूप छेरिंग के आशीर्वाद का आह्वान करता है और भगवान बुद्ध की समस्त शिक्षाएं इसमें समाहित है। मैक्लोडगंज के निवासी बहुत मिलनसार थे। मैं जहां भी जाता मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ वो मेरा स्वागत करते थे। कठिनाइयों का सामना करने और एक विदेशी भूमि के शरणार्थी होने की अपेक्षा भी वे शांत प्रतीत हो रहे थे। मुझे उनमें कोई भी भिखारी या ठग नहीं मिला। सभी संतुष्ट दिख रहे थे। एक परिवार ने मुझे अपने छोटे से घर में आमंत्रित किया और थुपका नामक नूडल का सूप और याक के मक्खन एवं नमक से बनी एक पारंपरिक चाय परोसी। ये चाय हिमालय की बर्फीली रातों में शरीर को गर्म रखने में विशेष रूप से असरदार थी। मेरा हृदय इन लोगों को देखकर इतना मोहित हो गया कि मैं घंटों बैठकर उन्हें अपनी दैनिक कार्य करते देखता रहता और वे मुझे देखकर मुस्कुराते रहते। दलाई लामा के घर से थोड़ी ही दूरी पर एक मंदिर में पद्मासन में बैठे भगवान बुद्ध की एक भव्य मूर्ति थी। साधु और सामान्य लोग अगरबत्ती, घंटी, दीप और अन्य भेंट अर्पित करते हुए इस विग्रह की पूजा कर रहे थे। उनकी पूजा की विधि ने मुझे बहुत आकर्षित किया। भगवान बुद्ध को बीच में रखकर सभी साधु दो पंक्तियों में आमने सामने बैठते और ऐसे बौद्ध ग्रंथों को पढ़ते जिन्हें खुले पत्तों पर खोदकर लिपिबद्ध किया गया था। वे एक स्वर में परंपरागत प्रार्थनाओं का उच्चारण करते और पढ़ने के पश्चात एक पत्ते को दूसरे पर रखते जाते। बीच बीच में कुछ साधु तुरही जैसे वाद्य यंत्र को फूंकते और अन्य साधु लकड़ी के हथौड़ों से घड़ियाल, डंडियों से नगाड़े और घंटियां बजाते। जब ये ध्वनि अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाती तो प्रमुख पुजारी विधिवत पद्धति से एक पीतल का राजदंड उठाता जिस पर अत्यंत बारीकी से शिल्पकारी की गई थी। ये दोर्जे था जो आध्यात्मिक शक्ति का प्रसारक था। मंदिर की दीवारों पर चटक रंगों से बनी कलाकृतियां भी, जिन्हें तंत्र कहते हैं, बौद्ध धर्म के इतिहास और प्रतीकों को दर्शाते इन तंत्रों की रचना ज्ञानार्जन में सहायता करने के लिए ली गई थी। मैं भी उन साधुओं के साथ ध्यान और मंत्र जाप करने के लिए बैठ जाता और जलते दियों और धूप की मधुर महक मेरे मन को और ऊंचाइयों पर ले जाती। दलाई लामा के प्रति उन लोगों के प्रेम और आदर ने मुझे विशेष रूप से प्रभावित किया। तिब्बती लोगों के लिए दलाई लामा में एक पोप के समान आध्यात्मिक बल और एक राजा के समान राजनैतिक अधिकार था। हर घर और दुकान में उनका चित्र प्रमुख स्थान पर रखा जाता था। एक दिन प्रातः जब मैं मंदिर में ध्यान कर रहा था तो घुटे सिर का एक लंबा अधेड़ लामा मेरे निकट आकर बैठ गया। उन्होंने गहरे लाल रंग का चोगा और गले में लकड़ी की मनकों की माला पहन रखी थी। उन्होंने बताया कि वे अनेक दिनों से मुझे देख रहे थे और फिर मुझसे पूछा कि क्या आपके मन में कुछ प्रश्न हैं। हम प्रतिदिन लगभग 2 घंटे के साथ में बिताते थे। एक दोपहर उन्होंने मुझे दलाई लामा के साथ व्यक्तिगत भेंट के लिए आमंत्रित किया। दलाई लामा का घर पेड़ों से भरे एक पर्वत पर था। क्योंकि उन पर जानलेवा हमले की संभावनाएं थीं, सशस्त्र भारतीय सैनिक उनकी सुरक्षा के लिए वहां तैनात थे। सुरक्षा जांच के पश्चात मुझे एक कमरे में ले जाया गया जहां शौख रंगों से बने भगवान बुद्ध और महान बोधिसत्वों के चित्र दीवारों को सुशोभित कर रहे थे। धातु से बनी बुद्ध की एक सुंदर मूर्ति मंदिर में स्थापित थी और वेदी फूलों, पीतल के दीपों, घंटियों एवं अन्य पूजा सामग्रियों से सजी थी। जलती अगरबत्तियां वातावरण को देवदार की सुगंध से महका रही थी। कुछ मिनटों पश्चात एक द्वार खुला और दलाई लामा ने प्रवेश करते हुए मेरी ओर देखा। भूरे चश्मे के पीछे उनकी आंखें उल्लास से चमक रही थी। उनका बड़ा सिर घुटा हुआ था और चौकोर चेहरे पर छोटी गोलाकार नाक थी। उन्होंने उजले सुनहरे रंग की कमीज के ऊपर गहरे मैरून रंग का चोगा पहना था। एक खिली मुस्कान के साथ ने वे मुझसे मिलने के लिए तेजी से आगे आए। जोर से हंसते हुए उन्होंने मेरे दोनों हाथों को कसकर पकड़ा और उन्हें बार बार हिलाते रहे। उनकी आंखें खुशी से चमक रही थी और वे प्रसन्न चित्त स्वर में बोले, आप बहुत दूर से आए हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। हम दोनों कुर्सियों पर आमने सामने बैठ गए। बालक जैसी उत्सुकता से उन्होंने अमेरिका में मेरे जीवन के विषय में पूछा और यह भी पूछा कि मैंने साधु का जीवन क्यों चुना है। जब मैंने अपनी कथा सुनाई तो उन्होंने एक एक शब्द ध्यानपूर्वक और लगाव से सुना। जब भी मेरी कथा में हास्य का संकेत होता तो उनका पूरा शरीर हंसी के ठहाकों से हिलने लगता और वे ताली बजाने लगते। लगभग आधे घंटे तक वार्तालाप करने के पश्चात मैंने तिब्बत में रह रहे उनके लोगों के विषय में पूछा। उनके चेहरे पर वेदना की लहर उमड़ आई और आंखें आंसुओं से भर गईं। हमारे बीच सन्नाटा छा गया। फिर उन्होंने धीरे से कहा, जब मैं छोटा था तो मेरा देश स्वतंत्र था, हम सुखी और एकजुट थे और हमारी भक्ति फल फूल रही थी। फिर वे कुछ देर के लिए शांत हो गए। उस गंभीर चुप्पी के बीच उन्होंने मुझे तिब्बती चाय देने के लिए एक केतली उठाई। मैं केतली से कप में गिरती चाय की भांप को देखने लगा। उन्होंने फिर केतली को उसके स्थान पर वापस रख दिया और गहन चिंतन में अपना सिर झुका लिया। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो वे अपने मन की आंखों से हिमालय की चोटियों के पार तिब्बत में अपने लोगों के संघर्ष को देख रहे थे और अपने हृदय में उनकी वेदना की अनुभूति कर रहे थे। उन्होंने नम्रता से कहा, हम भारत के बहुत ऋणी हैं कि उसने हमारे हजारों लोगों को आश्रय दिया। धर्म का एक महत्वपूर्ण गुण अन्य जीवों के प्रति करुणा दिखाना है, उन्होंने कहा। दूसरों के भले के लिए बलिदान करना ही सच्चा धर्म है। उनके द्वारा अपने लोगों के लिए किए गए असीम त्याग को जानते हुए उनके ये शब्द मेरे हृदय को छू गए। ध्यान, अध्ययन और पूजा, उन्होंने कहा, हमें आंतरिक शक्ति प्रदान करते हैं जिससे हम दयालु और ज्ञानवान बनते हैं। उनके संदेश ने मुझमें आत्मनिरीक्षण की भावना जगाई और उनके व्यक्तित्व ने उनके प्रति आदर की। किंतु उनसे प्राप्त स्नेह ने मुझे ऐसा एहसास दिलाया कि मानो मैं उनका एक अंतरंग मित्र हूं। उदारता से मुस्कुराते हुए दलाई लामा ने मेरे कंधों पर एक सफ़ेद रेशमी शॉल ओढ़ाई जिस पर तिब्बती मंत्रों की कढ़ाई की गई थी। अपने विशेष अतिथियों को ये भेंट देना हमारी परंपरा है, उन्होंने कहा। उनके अमूल्य समय और दया के लिए स्वयं को अपात्र समझते हुए मैंने कृतज्ञता से उनके समक्ष सिर झुकाया। उनके संग में निस्वार्थ सेवा का सद्गुण मेरे हृदय में और गहराई से जा बैठा। वे ऐसे व्यक्ति थे जो न केवल अपने आध्यात्मिक सिद्धांतों के प्रति समर्पित थे अपितु गुलामी और निष्कासन से पीड़ित अपने लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने की सेवा का भारी बोझ भी उठाए हुए थे। एक आशाहीन प्रतीत होते संघर्ष में उन्होंने असीम चुनौतियों और बाधाओं को सहन किया था। निष्कासन और धमकियों को झेलते हुए भी उन्होंने अपने लोगों की सेवा की थी। मेरे लिए वो शॉल इन सभी बातों की प्रतीक एक विशेष भेंट थी। मैं एक बार फिर से घने वृक्षों से आच्छादित पर्वत की एक गुफा में रहने लगा। सामने गहरी घाटी थी। वहां मेरा भोजन सत्तू जैसा सांपा नामक भुने जो जौ का सूखा चूरा था, ये अनेक दिनों तक खराब नहीं होता और पानी डालने पर दलिया जैसा बन जाता। इसकी जानकारी मुझे तिब्बती साधुओं ने दी थी। इस प्रकार अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को सरल बनाकर मैं प्रतिदिन नीचे मैक्लोडसगंज जाकर लोगों से कुछ न कुछ सीखता। रात को मैं अपनी गुफा में लौट आता। एक रात जब मैं पथरीली भूमि पर लेटा था, मैंने चेहरे से कुछ इंच दूर एक विशालकाय मकड़े को दीवार पर रेंगते हुए देखा। वो एक एक टांग उठाते हुए अपने काले रोएदार शरीर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा था। अंततः वो मेरे चेहरे से केवल 6 इंच दूर एक छेद में जा घुसा। बचपन में मैं मकड़ियों से बहुत डरता था। यदि एक भी मकड़ी घर में घुस आती तो मैं तुरंत भागकर माँ के पास जाता और उसे बाहर निकलवाने के लिए रोने लगता। गुफा का ये मकड़ा मेरे द्वारा अब तक देखे गए सभी मकड़ों से सर्वाधिक भयावह था। मैंने सोचा, भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मुझे इस भय पर विजय प्राप्त करनी होगी। उस रात से हम दोनों गुफा को आदरपूर्वक मील बांटकर रहने लगे। मैं जहां बैठकर ध्यान करता था, वहां से मुझे अक्सर जंगल में रेंगते फनियर नाग दिखते थे। कभी कभी अन्य सहवासी भी मेरे साथ रहने आते। एक रात एक बड़ा बिच्छू छत से नीचे गिर पड़ा, मुझसे कुछ ही इंच दूर पड़ा। वो अपने विषैले डंक को इधर उधर हिला रहा था। उस समय मेरी एकमात्र मोमबत्ती भी समाप्त होकर बुझ गई और गुफा में घुप अंधेरा छा गया। उस समय हिलना मूर्खता थी, इसलिए मैं अंधेरे में बहुत देर तक अचल बैठा रहा। वहां बैठे बैठे मैंने अपने पितातुल्य कैलाश बाबा का स्मरण किया। कैसे उन्होंने मुझे सांप और बिच्छुओं के निकट सही चेतना को बनाए रखना सिखाया था। धीरे से सांसें लेते हुए मैं भगवान से प्रार्थना करने लगा कि वे ईर्ष्या, भय और दूसरों के प्रति गलत धारणाएं बनाने की प्रवृत्ति से ऊपर उठने मेरी सहायता करें। एक दिन प्रातः गुफा में मेरा मन महाद्वीपों और समुद्रों को पार करता हुआ शिकागो के हाईलैंड पार्क में अपने पिता के पास पहुंच गया और मैंने उन्हें एक पत्र लिखा। भले ही मैं स्वयं अपनी दिशा के प्रति अनिश्चित था, फिर भी मैंने सोचा कि उन्हें भगवान के निकट आने के लिए प्रोत्साहित करके मैं उनके प्रति अपना प्रेम दर्शा सकता हूँ। इसलिए पत्र में मैंने उन्हें ऐसा मार्ग सुझाया जो उनके लिए सबसे सहज हो सकता था। युवावस्था के जोश में मैंने लिखा, आदरणीय पिताजी, मैं आपकी सेवा में कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। आपके भीतर जो करुणा है, वो बहुत कुछ आपको मेरे प्रिय दादाजी से विरासत में प्राप्त हुई है। मुझे विश्वास है कि यहूदी धर्म में पूर्ण श्रद्धा रखने से उनके हृदय में यह करुणा उत्पन्न हुई थी। दादाजी ने आपके हृदय में यहूदी धर्म के प्रति प्रेम का बीज आरोपित किया। कृपया इस बीज को पूरी निष्ठा से सिंचिए, जिससे आपको भगवान से प्रेम करने एवं उनमें श्रद्धा रखने की प्रेरणा प्राप्त हो सके। मुझे लगता है कि ध्यान लगाने से आपको यहूदी धर्म की गहराइयों में जाने की अंतर्दृष्टि प्राप्त होगी। यहूदी और अन्य महान धर्म हम सभी को भगवान के निकट ला सकते हैं। कृपया अपने पिता और पूर्वजों की प्रेरणा को संजोए रखें। मुझे विश्वास है कि आप वास्तव में यही चाहते हैं। आपका रिचर्ड, मैक्लोडगंज, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश, भारत, मई 1971। भारत में की अपनी यात्रा के अधिकांश भाग में मेरे साथ ऐसा कोई संगी नहीं था जिससे मैं अपने हृदय की बात कह सकूं। या तो मेरे मित्रों को अंग्रेजी नहीं आती थी, या वे महान शक्तिशाली साधु थे जो उम्र में मुझसे बहुत बड़े थे। कभी कभी मैं अकेलेपन का अनुभव करता, किंतु मैं भगवान के साथ अपने संबंध को विकसित करने के लिए मार्ग के रूप में उस अकेलेपन का आनंद उठाना सीख गया था। मेरी मौन प्रार्थनाएं वे माध्यम बन गई थी जिनके द्वारा मैं विचार और भावनाएं व्यक्त कर सकता था। ध्यान द्वारा प्राप्त शांति में मुझे मन और बाह्य जगत की चंचलता से बचने का आश्रय मिलता था। मेरे परिवार को अपने कुशल भावनाएं व्यक्त करने के लिए करता, यद्यपि मुझे लगता था कि मेरे शब्दों को समझने में शायद उन्हें कठिनाई होगी। कभी कभी मैं अपने मन के विचारों को एक छोटी डायरी में भी लिख लेता एक भरी दोपहर अपनी गुफा में एकांत में बैठे बैठे मैंने ये पंक्तियां लिखी। एक साधु के मन में मुश्किल घड़ियों में जब वो थका हारा होता है, असमंजस में कि वो कहाँ जा रहा है और क्या पीछे छोड़ आया है, वो नहीं जानता कि उन वस्तुओं को थामे रखे या सदा के लिए छोड़ दे जो अभी भी उसके पास हैं। क्या गंतव्य स्थान है उसका जिसने अपना घर और मित्रों को त्याग दिया है? उसके पास करने के लिए क्या है जो अकेला घूमता है अपनी तन्हाई के वीराने में? क्या वो उन दीवारों को तोड़ दें जो उसने अपने इर्द गिर्द खड़ी की हैं, या उन्हें और ऊंचा एवं मजबूत कर दें? वो याचना करता है, हे भगवान, क्या कोई मार्गदर्शक है जो मुझे आप तक आने का मार्ग दिखा दे? उस बेघर व्यक्ति को कहाँ रहना चाहिए जो ये मानता है कि उसका घर इस नश्वर संसार में नहीं है? मिस्र से आया हुआ एक एकांतवासी योगी मेरी गुफा से कुछ ही दूरी पर रहता था। समय समय पर हम एक दूसरे से मिलकर अपनी अंतर्मन की बातें करते। उसका रंग गहरा, बड़ी नाक, पतले होंठ और बढ़ी हुई दाढ़ी थी। उसकी काली, प्रखर एवं अंतर्मुखी आंखें ऐसे खोई रहती मानो वे किसी और ही दुनिया को देख रही हो। बाहर से वो शांत रहता था, किंतु उसका मन निरंतर चलते हुए जीवन की पहेली पर विचार करता रहता। वो एक भविष्यकर्ता था और ताश के विशेष पत्तों से भविष्य जानने वाली मिस्री कला मेटूनेटर का ज्ञानी था। एक रात उसने कहा, मैं तुम्हारा भविष्य पढ़कर सुना सकता हूं, क्या तुम जानना चाहते हो? मैं तैयार हो गया। पत्तों की गड्डी फेर कर उसने उन्हें एक नीले कपड़े पर सीधी पंक्ति में रख दिया। फिर मिस्र के कुछ प्राचीन तांत्रिक अनुष्ठान कर और मुझसे ध्यान की एक विस्तृत प्रक्रिया करवाने के पश्चात उसने मुझे एक पत्ता उठाने के लिए कहा। चमचमाते रंगों वाला प्रत्येक पत्ता लगभग 6 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा था और उन पर रहस्यमय चिन्ह एवं आकृतियां बनी थी। लगभग आधे घंटे तक वो ध्यान से उन्हें देखता रहा। फिर उसने चुप्पी तोड़ी। वो धीरे से कुर्सी से उठा, अपने दोनों हाथ मेज पर रखे और भविष्यवाणी कही, जिस आध्यात्मिक पथ को प्राप्त करने के लिए तुम लालायित हो, उसे पाने की शक्ति न तो तुम्हारे मन में है और न ही तुम्हारी बुद्धि में, किंतु अतिशीघ्र एक दिव्य शक्ति तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। हवा में उड़ते पत्ते के समान तुम्हें उस मार्ग पर ले जाया जाएगा जिसका तुम्हें पालन करना है। ऐसा लगा मानो उन पत्तों को मेरे विषय में संपूर्ण ज्ञान था और वो योगी उनका प्रवक्ता था। एक पत्ते पर अपनी अंगुली रखकर वो शांत हो गया। उसने अपनी आंखें बंद की और बुदबुदाया, तुम्हें धैर्य रख डटे रहना चाहिए, स्वयं से परे एक शक्ति के माध्यम से तुम उसे पहचान पाओगे जिसकी खोज तुम कर रहे हो। विश्वास करो, यही तुम्हारी नियति है, तुम्हारे गुरु स्वयं तुम्हारे पास आएंगे। यहाँ पे दूसरा अध्याय समाप्त होता है।